महाबंध पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्व प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबन्धम् नमाम्यम्।
यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें सातवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार हमारा चल रहा है। आज से ये पुस्तक चालू करते हैं और शुरू करने के पहले जो महाबंध का सारांश लिखा है वहां से पढ़ेंगे हम। महाबंध क्या है? महाबंध का सीधा साधा अर्थ है महान बंधन। दुनिया में एक से एक बड़े बंधन हैं, जिनको शारीरिक मानसिक और भौतिक शक्तियों के बल से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह राग एक ऐसा बंधन है जिसे साधु संत योगी ही अध्यात्म योग से तोड़ सकता है। मोह राग द्वेष का नाम कर्म है। इनमें अपनेपन की बुद्धि से कर्म बंध होता है। ये आत्मा का कर्म तो मोह राग द्वेष है और उसमें आत्मबुद्धि होने से कर्म का बंधन होता है। कार्य आत्मा का कर्म यानी कार्य, जिसको हम भाव कर्म भी कहेंगे। मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं, जो आत्मा का परिणाम। कर्म बंध से जन्म मरण सुख दुख की प्राप्ति होती है, जो संसार का मूल कारण है। कर्म किसी भाव का नाम मात्र नहीं है, किंतु वह एक हकीकत है जो द्रव्य और भाव रूप से अपना अस्तित्व रखती है। हकीकत लिया नहीं, इसलिए रखती है कहा, यानी सम एंटिटी है उस स्वयं। इसलिए मूल में कर्म के दो भेद है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ऐसे काल के अनादि निधन प्रवाह में अनादि काल से भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म प्रत्येक समय में उत्पन्न होता रहता है। जहां द्रव्य कर्म के निमित्त से कहेंगे तो पुराने कर्मों के उदय से वर्तमान में भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष और उसके निमित्त से नए कर्मों का बंधन। जो सदाकाल ज्ञान दर्शन में चेतता है उसे चैतन्य, और जो जीवित रहता है उसे जीव कहते हैं। ज्ञान दर्शन में चेतता है, जीव चेतन है, कर्म जड़ है। लेकिन अनादि काल से दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगम ग्रंथों में कर्म शब्द का प्रयोग इन तीन अर्थों में मिलता है, जीव की स्पंदन क्रिया, जिन भावों से यानी राग द्वेष मोह से स्पंदन क्रिया होती है, और जो कर्म रूपे ने कार्मण पुद्गल में संस्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी एक तो जीव की स्पंदन क्रिया, दूसरा मोहराग द्वेष कि जिनसे वो स्पंदन क्रिया होती है, और तीसरे कार्मण पुद्गलों में संस्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जन्म जन्मांतरों में बने रहने वाले वासनात्मक संस्कार कर्म है। नहीं, वासनात्मक संस्कार जो है वो वासनात्मक संस्कार बना रहा ना वो पुद्गलों में, परंतु यहाँ लिखा ना आठ कर्म की बात है, कार्मण पुद्गलों में संस्कार के कारण कौन है तो मोह राग द्वेष। हाँ, वो राग द्वेष मोह से जो संस्कार उत्पन्न हुए, देखो यहाँ मोह राग द्वेष ही संस्कार का कारण बताया, और संस्कार किसमें रहते वो कार्मण पुद्गलों में रहते। जीव के मोह राग द्वेष से पुद्गलों में कुछ संस्कार पड़े वो बने रहेंगे कुछ काल तक। हाँ, देखेंगे। कर्म का मुख्य काम जीव को संसार में रोक कर रखना है। राग द्वेष और मोह के निमित्त से आत्मा के साथ जो कर्म संबंध को प्राप्त होते हैं, उनके साथ अमुक समय तक बने रहने को स्थिति कहते हैं। ना, ये तो कर्मों की स्थिति हुई, कर्मों का संबंध कितने काल तक रहता है उसको स्थिति कहेंगे।
जन्म जन्मांतरों में बने रहने वाले वासनात्मक संस्कार कर्म है, आपने पूछा क्या है जीवों के परिणामों की बात है।
ये कर्मों में संस्कार
है, उसके लिए यहाँ उत्तर दिया है समय तक बने रहने को स्थिति कहते हैं, स्थिति वाली बात की बात चल रही है।
यहाँ तो स्थिति है, वासना अलग, वासनात्मक संस्कार जो है, यानी जो ज्ञानावरण में ज्ञानावरण संबंधी संस्कार है, मोहनी में मोहनी का है, इस तरह से वो संस्कार है अपने अपने, तो वो कितने काल तक रहेगा उसको स्थिति कहेंगे। हाँ, कर्म, आठ कर्मों की बात है, वो तो बात सही है। वो तो रेगुलर लौकिक की बात है। देखो, दुनिया में एक से एक बड़े बंधन है जिनको शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों के बल से तोड़ा जा सकता है। यानी किसी को बांध के रखा है रस्सी से, शारीरिक बल से तोड़ा जा सकता है, मानसिक बल से तोड़ा जा सकता है, यानी उसके वहां पर ले लिया, यानी जो हम कहीं ना एक दूसरे के साथ कोई जो बंधन है उसको तोड़ दिया मान लेते हैं मन के द्वारा। और भौतिक शक्ति यानी अन्य जो लौकिक जो बातें हैं, हाँ ये सब तीनों लौकिक है। यहाँ लिखा ना दुनिया में एक से एक बड़े बंधन है, वो पहली दूसरी लाइन में भौतिक है ना, फिजिकल जो है। यानी कोई यांत्रिक ले सकते हैं उसको, या कोई अन्य भी बातें ले सकते हैं, अन्य जो है। हाँ, वो तो काटा उसको कैंची से, बराबर। ये भौतिक शक्ति है, रेगुलर लौकिक जो लौकिक अर्थ में है ये। और परंतु मोह राग द्वेष ऐसा बंधन है कि उससे वो कर्मों में वासनात्मक संस्कार पड़ते हैं, वो बने रहते हैं, और कुछ काल के बाद फिर उसका उदय आता है। तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। महाबंध सात पुस्तकों में है। पहली पुस्तक प्रकृति बंधाधिकार है, इसमें कर्म के स्वभाव का स्वरूप बताया गया है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, कर्म के असली स्वभाव का नाम मूल प्रकृति है। अलग अलग भाग के रूप में जिसे कहा जाए वह उत्तर प्रकृति है। स्वभाव बतलाने का प्रयोजन द्रव्य की स्वतंत्रता बतलाना है। जीव कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म कभी जीव रूप नहीं होता, किंतु इन दोनों के संबंध का नाम बंध है। किसने लिखा है? कुलचंद जी ने लिखा है, देवेंद्र कुमार शास्त्री नीमच वाले। अपने भूगोल के शिविर में आए थे ये देवेंद्र कुमार नीमच वाले। हाँ, प्राकृत का बड़े अभ्यासी थे, बहुत सीनियर थे विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान। अभी हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे। यहाँ हमने देखा, जीव कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म कभी जीव रूप नहीं होता, किंतु इन दोनों के संबंध का नाम बंध है। कोई भी वस्तु अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। नीम अपनी कड़वाहट छोड़कर मीठा नहीं होता और शक्कर कभी मीठा छोड़कर अन्य रस रूप नहीं होता। आगम छह खंडों में निबद्ध है, ये षटखंड आगम कहते हैं ना। आगम ग्रंथों को ही सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। आचार्य नीमिचंद्र का कथन है कि जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध के भेद से षटखंड रूप सिद्धांत शास्त्र है। ये कर्मकांड गाथा 397 में लिखा है। ये सब हमारे हो गए हैं। पहले पांच खंडों पर तो धौला टीका है और महाबंध, हाँ ये छठा अकेला महाबंध है। ये अपना तो हो गए सब, यहाँ पढ़ना समाप्त तो हुआ है। अभी ये सातवीं पुस्तक हम बाकी रहेगी हमारी। और हमने हाँ धौला की जो 16 पुस्तकें है ना, उसमें ये पांच खंड है और वो पुष्पदंत आचार्य ने लिखे थे। वो उसकी जो धौला जो है वो टीका है, वीरसेन स्वामी ने लिखी है। और मूल तो उनके तो सूत्र जो है प्राकृत में जो कुछ लिखे हुए, जैसे यहाँ महाबंध में तो जो मूल ही मूल है उसकी कोई टीका नहीं है, ये ओरिजिनल है। है ना, मूल सूत्रों के ऊपर नहीं, नहीं, ये सब उसके ये विषय है अलग अलग। ये पांच विषय है, ये पांच खंड है। और जैसे पहली पुस्तक दूसरी पुस्तक जो ऐसे है ना, तो उसमें इनके विषय समझाए। इनको सबको सिद्धांत शास्त्र कहते हैं और इसलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। आचार्य नेमिचंद्र को सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों के जो जानकार वो उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। कर्म की सामान्य प्रकृतियां 148 है, इनके विशेष भेद अनंत हो जाते हैं। ये तो अनुभव की अपेक्षा हो सकते हैं, परंतु वैसे तो हम असंख्यात लोक प्रमाण देखते थे, है ना। उस सिद्धांतों के कुछ विषय उसमें ले लिया है, ये षटखंडा को, षटखंडागम को सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। वो तो उसमें से निकाले हुए है, परंतु ये मूल षटखंड है ना, ये सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। या जो हमने जो देखा था कि जयधवला का जो जिसमें से निकाले थे कषाय प्रावृत और चूर्णी सूत्र वगैरह, जो वो मूल सूत्र रचना थी, कषाय मूल रचना यतीश्वराचार्य थी, उसमें से भी वो गुणधर आचार्य ने लिखा हुआ तो कषाय प्रावृत है, वो मूल सूत्र है एक्चुअली, ओरिजिनल सूत्र उसमें है। वो जयधवला की भी बात अपनी यहाँ 16 पुस्तकों की हो गई है। अब यहाँ विशेष भेद अनंत हो जाते हैं, मेरे ख्याल से वो अनुभव की अपेक्षा बताएंगे, परंतु ऐसे कर्मों के भेद असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। वो उसे पांच ज्ञानावरण तथा पांच अंतराय की प्रकृतियों का सर्वबंध होता है। इन्हें वो पांचों बनती है, पांचों अंतराय और पांचों ज्ञानावरण जब बनती है तो पांचों ही बनती है। आयु कर्म को छोड़कर सातों कर्मों की प्रकृतियां निरंतर बनती रहती है। कर्म की प्रकृतियों के स्वरूप को कहना, वर्णन करना प्रकृति समुत्कीर्तन कहलाता है, जो महाबंध के प्रथम भाग का मूल विषय है। यह प्रकृति बंध अधिकार षटखंडागम के वर्गणाखंड के अंतर्गत बंधनीय अर्थाधिकार में 23 उद्गल वर्गणाओं की प्रवृत्ति में विवेचित है। ये भी अपने 23 जो वर्गणा है उसका विस्तार से हमने स्वरूप देखा था। 24 अनुयोग द्वारों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। किसी भी विषय को समझाना है तो ये 24 अनुयोग द्वार तो होते ही है, हमेशा हम यहाँ पर ही उसको देखते आए हैं। महाबंध में भी यही शैली अपनाई गई है, ये 24 अनुयोग द्वारा किसी विषय को समझाना। इसमें ज्ञानावरणी की उत्तर तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियों का विवेचन किया गया है। यह कहा गया है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों के निमित्त से जाति, बुढ़ापा, मरण और वेदना उत्पन्न होती है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। जीवों को एक और अनेक जन्मों में पुण्य तथा पाप कर्मों का फल मिलता है। कर्म के उदय में जीव के राग, द्वेष और मोहरू भाव होते हैं। होती है कैसे होते हैं चाहिए ना? और होते हैं, है के ऊपर बिंदी भी चाहिए। उन भावों के कारण कर्म बनते हैं। कर्मों से चार यानी मनुष्य तीन नरक देव गतियों में जन्म लेना पड़ता है। उससे शरीर मिलता है, शरीर के मिलने से इंद्रिया होती है, उनसे यह जो विषयों को ग्रहण करता है, विषयों को ग्रहण करने से राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। यही संसार चक्र है। महाबंध में सामान्यतः बंध के चार भेदों का यानी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। मूल में प्रश्न यह है कि जीव अमूर्त और कर्म मूर्तिक है। अमूर्तिक होने से जीव में स्पर्श गुण नहीं है। जब जीव कर्म को छू नहीं सकता है तो फिर बनता कैसे है? इसका मुख्य कारण जीव की अपनी कमजोरी है। जीव ज्ञानमय है लेकिन ज्ञानावरण कर्म के उदय में अपने को भुला हुआ पर को जानने में लगा रहता है। परिणमन करने की शक्ति जीव में है, अतः राग द्वेष मोहरू परिणमन से कर्म का बंधन करता रहता है और अज्ञानी आत्मज्ञान नहीं होने से इन्हें वो अज्ञानी बना रहता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के निमित्त से कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व नपुसक वे धुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटी का सहनन का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, जो महाबंध भाग 1 पृष्ठ 47। मिथ्यात्व के उदय में ही प्रथम गुण स्थान होता है। योग और मोह से उत्पन्न स्थिति क्यों कहा? मिथ्यात्व के भाव से मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का बंध करता है। मिथ्यात्व का बंध करने वाला 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, ये सारे गृहबंदी प्रकृतियों के लिस्ट बताए पहले। तेजस कारमान शरीर, वर्ण चतुष, अगुण लघु, उपघात चाहिए, अपघात हुआ है, उपघात निर्माण और 5 अंतराय का नियम से बंधक है। अब जो बाकी जो प्रकृति है वो ऑप्शनली कौन सी बंधेगी, उसमें गोत्र में कोई एक गोत्र बंधेगा आगे। मिथ्यात्व में रंजना शक्ति है, इसलिए मिथ्यात्व का बंध करने वाला तीनों लोकों का स्पर्शन करता है। रंजना शक्ति यानी रक्त होता है, ऐसा बना रहता है, रंजायमान होता है। मिथ्यात्व के बंधकों का स्पर्शन क्षेत्र 8/14, 13/14 या सर्वलोक है। यही नहीं, कर्म की स्थिति से मतलब केवल मोह या मिथ्यात्व की 70 कोड़ाकोड़ी, कोड़ाकोड़ी ने 1 करोड़ गुना 1 करोड़, सत्तर कोड़ापुड़ी सागर की स्थिति से है, जिसमें सब कर्मों की स्थिति का संग्रह है, यानी उसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। जब कर्म की इन जनरल करेंगे तो सत्तर कोड़ापुड़ी कहेंगे। कर्म की स्थिति दो तरह की होती है, कर्म स्थिति और निषेक स्थिति। द्रव्य कर्म आठ प्रकार के है, ज्ञानावरणीय जो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट होने से रोके, दर्शनावरणीय जो पूर्ण दर्शन को विकसित न होने दे, वेदनीय जिससे सुख दुख का वेदन हो, मोहनीय जिससे मोहरूप अनुभव हो, आयु जिससे जीव को अमुक समय तक शरीर में रहना पड़े, नाम जिससे गति जाति शरीर आदि मिलता है, गोत्र ऊंच नीच कुल जिससे मिले, और अंतराय विघ्न यानी बाधा उत्पन्न करने वाला। ये कर्म की मूल प्रकृति के आठ भेद कहे। इन आठ मूल प्रकृतियों के 148 भेद हैं। इनमें से कर्म बंध योगी 120 प्रकृतियां हैं। यद्यपि उत्तर प्रकृति 148 है, लेकिन दर्शन होने की सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, मी को ग लगाओ, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व है। पढ़ू, ये दो अबंध प्रकृतियां हैं और पांच बंधनों तथा पांच संघातों का पांच शरीरों में अंतर्भाव हो जाता है, यानी एक पांच पांच दस ये और कम कर। इसी प्रकार स्पर्शाधिक चाहिए, स्पर्शाधिक हुआ है, जैसे स्पर्श की आठ है पर्याय है, रस की पांच है, ऐसे डिटेल करो तो 20 हो जाती है। तो स्पर्शाधिक के 20 वेदों के स्थान पर चार का ग्रहण किया है, इसलिए 28 प्रकृतियां कम होकर 120 प्रकृतियां कही गई है, ये बंधे योग्य है। इन कर्म प्रकृतियों में से ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय की 19, मिथ्यात्व 16 कषाय भय द्विक तेजस द्विक अगुण लघु द्विक निर्माण और वर्ण चतुष्क, ये 47 ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां हैं। द्रव्य कर्म की रचना कर्म परमाणुओं से होती है। जीव के राग द्वेष मोह भाव के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन क्रिया होती है, उससे समान गुण वाले वर्गों का समूह वर्गना रूप परिणमन करता है, जो कर्म का आकार ग्रहण करता है। वर्गना तो समान गुण वाले, गुणे ने अविभाग प्रतिच्छेद, उसके समूह को हम वर्गना कहते हैं, यानी यह कारमण वर्गना की बात है। यद्यपि वर्गनाएं 23 प्रकार की कही है, किंतु उनमें से आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमण वर्गना, ये ही पांच ग्रहण योग्य, यानी जीव के द्वारा ये ग्रहण होती है। कारमण वर्गना से कर्म की रचना होती है। कर्म के परमाणु कहीं बाहर से नहीं आते, वे शरीर में ही विद्यमान है, शरीर में ने उसी आत्म प्रदेश में, एक क्षेत्र में, यानी जीव के क्षेत्र में ही विद्यमान है। क्योंकि आप नहीं तो कहेंगे कि विग्रह गति में तो भी कर्म का बंध होता है, वो कहां से आएंगे, वहां तो शरीर नहीं है, परंतु तो कारमान शरीर है, यानी जीव के जो प्रदेश है वहीं पर एक क्षेत्रावगाह रूप से है। प्रत्येक कर्म प्रकृति की वर्गना भिन्न भिन्न है, ये भी महत्व की बात है। जो ज्ञानावरण रूप परिणमित होने वाली वो वर्गना अलग है, जो दर्शनावरण होती है वो अलग है। ये जितने कर्म के प्रकार है ना, उतने वर्गनाएं अलग अलग प्रकार है। कर्म परमाणु स्कंधों के रूप में निक्षिप्त होते हैं, जिनको निषेक कहा जाता है। कर्म निषेक रूप में बनते हैं और निषेक रूप में झड़ते हैं। मिथ्या दर्शन असंयमादि परिणामों से कारमण वर्गना के परमाणु कर्म रूप से परिणत होकर जीव प्रदेशों के साथ संबद्ध होते हैं, जिसे प्रकृति बंध कहते हैं। इस प्रकृति बंध की प्ररूपना 24 अनुयोग द्वारों में की गई है, जो महाबंध की पहली पुस्तक के रूप में है। एक समय में एक ही कर्म प्रकृति का बंध होता है, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जगन्य बंध और अजगन्य बंध, प्रकृति बंध में संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, समझ में आई बात?
नहीं, देखो यहाँ क्या कहना,
जो हम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य कहेंगे। अभी जो हम प्रदेश बंध की बात हमारी रिसेंट हुई ना, हम उसकी चर्चा करेंगे, तो उसमें कभी जीव का उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा, कभी अनुत्कृष्ट होगा, कभी जगन्य होगा, कभी अजगन्य होगा। अब जो प्रकृति बनती है उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्या लगाएंगे? ये चार जो है वो तो अन्य तीन में होते हैं। स्थिति बंध में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थिति कह सकते हैं, अनुभाग बंध उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, प्रकृति बंध उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कह सकते हैं। जो प्रकृतियां बन रही है, ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां बन रही है, वो उत्कृष्ट बंध है कि अनुत्कृष्ट बंध है? उसमें कोई प्रकृति में कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं होता, प्रकृति तो प्रकृति है, तो उसमें ये चार प्रकार नहीं होते। हाँ, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि भेद होते हैं, यही कहना चाहते हैं।
इसके पहले में जो एक समय में कोई कई कर्म होता
है ना, उसमें से नहीं एक होता नहीं, वो सभी बनती है, वो नहीं लेना है उसमें। यानी जो बंद होता है जिन प्रकृतियों का ग्रुप रूप से, वही बंद हो रहा है, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं होता, बस इतना कहना चाहिए। ये वाक्य मुझे भी नहीं ख्याल में आया, एक समय में एक ही कर्म प्रकृति का बंद होता है, यानी उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा लेना है प्रकृति बंद जो है, एक कर्म की प्रकृति बनती है ऐसा नहीं लेना। प्रकृति बंध जो है वो जो बंधन है वही एक बंधन, जितनी प्रकृतियां बंधी उसको हम प्रकृति बंध कहेंगे। जो प्रकृति बंध हो रहा है, एक समय में किसी जीव को एक प्रकृति बंध हुआ, कितना हुआ? तो मिथ्या दृष्टि को अभी ऊपर गिने, वो तो ध्रुव बंधी तो बंधे बंधे, एक कोई वेदिनी बंधेगा, एक कोई गोत्र बंधेगा, इस तरह से हम उसके टोटल करेंगे मान लेते हैं, तो वो उसका एक प्रकृति बंध हुआ। जितनी जिसका जो बंध स्थान है उसका, उतनी प्रकृतियां बंधी उसको, प्रकृति बंध तो हुआ, किंतु स्थिति बंध वगैरह में जो ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बात होती है वो नहीं होती वहां पर, क्योंकि प्रकृति जितनी बंधेगी उतनी बंधी, उसमें हम क्या उत्कृष्ट कहेंगे? उसको जगन्य नहीं कह सकते, उसको उत्कृष्ट नहीं कह सकते, ये यहाँ कहना चाहते। हाँ, वो उनकी वाक्य रचना अटपटी है, इसमें ऐसा समझना है कि जैसे स्थिति अनुभाग और प्रदेशों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि चार भेद होते हैं, ऐसे इसमें चार भेद नहीं पाए जाते, बस प्रकृति बंध होता है, बस इतना है। यानी इसका अर्थ ऐसा हमें लेना है, अर्थात उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि भेद प्रकृति बंध में संभव नहीं है। अब महाबंध का विषय, सात पेज पर आते हैं। महाबंध का मूल विषय कर्म बंध है, बंध का अर्थ है बंधना। प्रश्न यह है कि जीव बनता है, कर्म बनता है, या दोनों परस्पर बनते हैं अथवा बांधते हैं? आचार्य भूतबली भगवंतों का अभिप्राय प्रकट करते हुए कहते हैं, आचार्य भूतबली भगवंतों का अभिप्राय प्रकट करते हुए कहते हैं, को बंधो को अबंधो, पुस्तक एक में पूछा है, अर्थात मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक सभी बंधक है। बंधक का अर्थ बंधना तथा बंधने वाला है। यदि जीव कर्म से बनता है तो संसारी है, और कर्मों से छूट जाता है तो मुक्त है। यह सुनिश्चित है जीव अपने आप को भूल जाने के कारण स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है, तभी कर्म उसके साथ संयोग में है। लेकिन महज संयोग मात्र नहीं है, हकीकत भी है। जीव के स्वभाव में किसी केवल हाँ महज है ना, महज संयोग है ना, जैसे पहले हम बताए थे ना वो हकीकत न हकीकत है, यानी केवल कल्पना भी नहीं है। जीव के स्वभाव में किसी कर्म का प्रवेश नहीं है, कहा भी है दौवस्य दौवेण दौव भावाणम वा जो संयोगो समवाओ वा सो बंधो नाम, अर्थात द्रव्य का द्रव्य रूप से और द्रव्य का भाव रूप से जो संयोग या समवाय है उसका नाम बंध है। ये धवला पुस्तक 14 में लिखा हुआ है। व्यवहार से भी जीव भावों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, अतः राग द्वेष मोह के अतिरिक्त कर्म की प्रकृति क्या है, उसका संबंध जीव के प्रदेशों के साथ, यह भी स्पष्ट है। एक साथ कुछ समय तक एक ही प्रदेश में जीव और कर्म के रहे बिना संबंध स्थापित नहीं होता, यानी कुछ काल इकट्ठे रहेंगे तभी तो हम कहेंगे उसका संबंध हुआ। इसलिए जीव और कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा गया है। जैसे एक ही बर्तन में दूध और पानी मिले हुए होने पर भी अलग अलग है, इसी प्रकार जीव और कर्म के एक साथ रहने पर भी वे दोनों अलग अलग है। यही नहीं, दोनों के काम भी अलग अलग है, लेकिन कर्म का फल जीव को मिलने के कारण, क्योंकि जीव उस रूप वेदन करता है, इसलिए कर्म की प्रकृति को जीव रूप कहा जाता है, अर्थात उस समय जीव का वही भाव होता है। चौदह गुणस्थानों में से प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहार अव्यय का बंध न होने से 116 क्यों कहा, 117 चाहिए, 117 प्रकृतियों का बंध होता है। द्वितीय गुणस्थान सांसाधन में मिथ्यात्वादी 16 प्रकृतियों का बंध न होने से 101 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र गुणस्थान में 69 प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान के कितनी बंधे उच्चित है याद है, 25, और तीन आयु नहीं बंधेगी आपको। चतुर्थ गुणस्थान में अविरत समय दृष्टि के देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाने से 61 कर्म प्रकृतियों का 71 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि 69 में दो बढ़ गई ना, मनुष्यायु भी बढ़ी और देवायु भी बढ़ी। वो बंध उच्चित्य हो जाएगी तो पांचवे में उतना कम हो जाएगा। देखो तीसरे और चौथे में क्या, चौथे में बढ़ जाते हैं ना देवायु तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने से, ये मनुष्यों की अपेक्षा बताई क्या, क्योंकि चारों की बात करेंगे तो उसमें तो अच्छा, तो ये 25 और 6 उसमें लिए क्या, एक मिनट, 101 में से कितनी कम कर दी उन्होंने, 6 और कम कर दी, 31 कम कर दी, और फिर आयु भी कम कर दी, ये मनुष्यों की अपेक्षा बात कर, ये मनुष्यों की अपेक्षा बात लगाए
तो करेक्ट तो नहीं कर रहे हैं यार, 60 बन ही हो जाएगी ना, 60 क्योंकि 6 और कम करनी पड़ेगी,
ना 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 69 तो बता दिया ना उन्होंने, 101 में से वो 69 हो गई, तो उसमें दो आयु बंधेगी तो 71 हो जाएगी, नहीं समझा, आपके पास कुछ लिखने का है ना? देखो पहले 117 बनती थी, हाँ, फिर उसमें से कितने माइनस हुई? 16, तो रहेगी 101। हाँ, 101 तक समझ में आएगा बात। जब 100, हम पहले जनरल बात करेंगे, 101 है साधन में, उसमें से 25 तो विच्छित्ति वाली है और सभी की अपेक्षा दो आयु बन सकती है, तिरियंचायु तो साधन के 25 में ले लिया हमने, अन्य जीवों के देवायु और मनुष्यायु बन सकती है, वो नहीं बन देगी तीसरे गुण स्थान में, तो वो 25 और 2 27 माइनस करनी पड़ेगी। तो चारों गति की अपेक्षा अगर बात करते हैं तो 7 × 4 = 18 = 3 = 74 बनती है, परंतु मनुष्यों में 6 और माइनस हो जाएगी। नहीं, मनुष्यायु तो यहाँ ले ली हमने, इसलिए 5 माइनस हो जाएगी। मनुष्यों की जो 6 है उसमें से आयु हमने यहाँ इसमें इंक्लूड कर दी, हाँ वो सब, उसमें से 5 माइनस हो जाएगी तो 69 रहेगी। ये मनुष्यों के लिए 69 औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्रषभ नारायण, हाँ मनुष्य गति मनुष्य 5 माइनस की मनुष्य आयु हमने इसमें ली थी, ये 69 हुए मनुष्यों की अपेक्षा। अब यहाँ बाजू में लिखो मनुष्यों की अपेक्षा, क्योंकि चार गति की अपेक्षा ये बात नहीं घटित होती। अभी देखो आगे यहाँ तक आए ना, तीसरे गुण स्थान में, चौथे में जाने पर देवायु और तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो 71 हो जाती है, तो वहाँ 71 करेक्शन किया वो बराबर है। अभी चौथे गुण स्थान में अन्य जीवों के लिए 10 की विच्छित्ति होती है, और मनुष्यों में हमने 6 की विच्छित्ति पहले ही कर दी है, तो यहाँ 4 ही की विच्छित्ति हो जाएगी, और प्रत्येक अनावरण 4 ख्याल में आई बात। तो 69 प्लस 71 थी, उसमें से 4 गई, 67 रह गई। देखो पंचम देश विरुद्ध गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण 4 प्रकृतियों का बंध न होने से 67 प्रकृतियों का बंध होता है। अब 67 में पांचवे गुण स्थान की बंध विच्छित्ति कितनी है? 4 की। प्रमत्त गुण स्थान में 63, अप्रमत्त गुण स्थान में, गुण में लिखा है, ये गुण स्थान में चाहिए, सब जगह उन्होंने पूर्ण 6 की कैसे प्रमत्त गुण स्थान में 63 हुए बंध की विच्छित्ति, अप्रमत्त गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का बंध होता है अप्रमत्त में। अब यानी वहाँ छठे गुण स्थान में 6 की बंद विच्छित्ति हुई, एक मिनट, आहार द्वीप का बंद प्रारंभ होगा, तो 4 की कर दी 63 में जो 4 गए 59 हो गए, बंद होता है। अपूर्वकरण में अभी एक देवायु की बंद विच्छित्ति हुई 58 प्रकृतियों का, अनिवृत्तिकरण में 22 प्रकृतियों का, क्योंकि अपूर्वकरण में निद्रा प्रचला पहले बाद में, फिर बीच में 30 प्रकृतियां और लास्ट में 4, 36 कम हो गई, तो 58 में से 36 गई 52 प्रकृतियों का, और अनिवृत्तिकरण में एक एक का बंध रुकता चला जाता है, पहले वेद का, फिर एक एक क्रोधमान माया लोक का, तथा उपशांत में 17 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, 22 में से 5 गए ना, एक वेद और 4 कषाय। सूक्ष्म सांप्राय क्षीण कषाय और सेवक केवल गुण स्थानों में केवल एक कर्म प्रकृति का बंध होता है, जो सातावेदनी बनती है, क्योंकि 10वें में जो है 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, उलटा लिखा बरोबर उपशांत कशा में नहीं, सूक्ष्म सांप्रदाय में 17 कर्मों प्रकृतियों का बंध होता
है
वो यहाँ लिखना और ये सूक्ष्म सांप्रदाय ऊपर लिखना। देखो अनिवृत्तिकरण में 22 प्रकृतियों का तथा सूक्ष्म सांप्रदाय में 17 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। अब लिखना है उपशांत कषाय, यहाँ उपशांत कषाय लिखो यानी उपशांत कषाय क्षीण कषाय और संयोगी गुणस्थानों में केवल एक कर्म प्रकृति का बंध होता है बरोबर, किंतु 14वें गुणस्थान योग केवली में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं होता। जैन धर्म भाव प्रधान है, जीवों के मिथ्या तो अवस्था में मिथ्या भाव होते हैं और सम्यक अवस्था में सम्यक तो भाव होते हैं। वास्तव में जीव में प्रत्येक भाव रूप परिणमन उसकी अपनी योग्यता से होता है किंतु कथन निमित्त सापेक्ष किया जाता है। सिद्धांत शास्त्र में अंतरंग बहिरंग कारण निमित्त की अपेक्षा कहे गए हैं, परंतु जीव का स्वभाव परम निरपेक्ष है। यह निमित्तों का कथन होता है, अंतर इतना ही है कि परमागम में आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव का वर्णन सर्वप्रथम किया जाता है किंतु सिद्धांत यानी आगम ग्रंथों में उसे सबसे अंत में समझाया जाता है। इसलिए उसको सिद्धांत कहते हैं, अंत में सिद्ध यानी शुद्ध स्वरूप का स्वरूप बताएंगे। परिणाम दो प्रकार के, सराग और वितराग। जैन धर्म वितराग भाव में है, अतः जैन धर्म वितराग है। पंचगुरु वितराग है, जिनवाणी वितरागता की प्रतिपादक है और अरहंत प्रतिमा वितरागता की प्रतीक है। जैन साधु आदर्श है, परमार्थ से वितरागता ही साधुता है। अन्य प्रकार से दो प्रकार के परिणाम है, उत्कृष्ट और जघन्य। पहले सराग वितराग की बात की उन्होंने, अनंत नाम संसार का है क्योंकि उसका कभी अंत नहीं है, जो संसार का कारण है वह अनंत है। यहाँ पर मिथ्यात् परिणाम को अनंत कहा गया है, ये पहली बात अपनी आई थी और उसके साथ जो जुड़ता है वो अनंतानुबंधी भी कहलाता है। राग द्वेष संसार का कारण है, बंध का कारण है, संसार में टिकाने वाला और उसका फल देने की शक्ति वाला है, किंतु अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व ही है। यानी राग द्वेष को भी संसार का कारण कहे परंतु वो अनंत संसार का कारण नहीं कह सकते, वो मिथ्यात्व के साथ होगा। तो जो उस मिथ्यात्व के साथ यानी अनु बंधती है, उसकी सहचारी है, उस कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। तथा ही ये गोमरसार कर्मकांड के आधार से लिखा है, अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्यात्वम् अनंतम् तत् अनुबधन बध्नन्ति इति अनंतानुबंधिनः। इसका अर्थ तो उन्होंने पहले ही बता दिया, ये जीव तत्व प्रदीपिका टीका से उन्होंने गाथा 45 गोमर सर के कर्मकांड में बताया। मिथ्यात्व में भी स्निग्धता है, वो 85 का गाथा 67 उसकी समय टीका में लिखा है। महाबंध में यह प्रश्न किया गया है कि किस भाव से जीव कर्म प्रकृति को बांधता है, उत्तर है कि सभी प्रकृतियों का बंध औदयिक भाव से होता है। ये भावानुगम में हर बार हमने देखा ना, एक लाइन में भावानुगम पूर्ण हो जाता है। उदयगो भावो एवं याव अनाहरऊति नेदवम, इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई बोला?
अनाहर
नहीं बोलो। अरे हमने हर बार देखा है ऐसा नहीं है, ये अनाहरक मार्गणा तक ऐसा ही जानना चाहिए उसका अर्थ। इन्होंने भी उसका अर्थ कुछ अलग लिया। जब तक जो अनाहरक अवस्था प्राप्त नहीं करता है तब तक औदयिक भाव से कर्म बांधता है। अनाहरक तो यहाँ पर भी है ना, विग्रह गति में भी है, यानी ऐसा ही अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। नेदव यानी क्या था वो नेदव
जाना चाहिए।
आगे लिखा है ना, जब तक जीव अनाहरक अवस्था प्राप्त नहीं करता है तब तक औदयिक भाव से कर्म
निकालो। एक नंबर की पुस्तक निकालो, एक नंबर, एक नंबर की बात चल रही है ना। और इसमें भावाधिकार निकालना है भावानुभव, उसी में लिखा होगा ना। बोध के पहला ना भावानुभव 269 भावानुभव कहाँ शुरू हुआ, भावानुभव का निर्देश 290 है क्या, ये 9 और उनका 6 अलग से दिखता है। एक मिनट, हाँ भावानुभव से लिखा, उन्होंने लिखा नहीं ऐसे। हाँ ये उसमें हर एक पर अलग अलग बताया है, सभी मार्गणाओं पर घटित किया है। देखो अनाहारक, अनाहारक मार्गने आहार मार्गना में लास्ट में बता रहे अनाहारे कम्मयोग भंगो, अनाहारक में कारमान कायोग के समान भंग है। नवरी साध ओगम, विशेष यह कि यहाँ साता वेदनी का ओगवध बंध जानना। इसी प्रकार सामान्य से भी ओगवध जानना चाहिए। मिथ्या तो संयुक्त 16 प्रकृतियों का ओगवध भंग है। मिच्छत संयुक्ता हो 16 प्रगतियों ओघा हो, सौवत्थ या व अनाहारगति बंधगाति को भाव हो, अनाहारक पर्यंत सर्वत्र बंधकों का कौन सा भाव है, ओदयो भाव हो। अबंधगाति को भाव हो, अबंधकों का कौन सा भाव होता है, यानी उसका यह अर्थ है सभी मार्गणाओं में यही लिखा है ना वाक्य उन्होंने। अभी जो हमने पढ़ा था रेवम याव अनारोह तीन एदव नहीं यहाँ तो ये भाव लिए सौवत्थ याव अनाहारगति बंधगाति को भाव उदयगो भाव अनारकों में कौन सा भाव है वो बताए वो भावों की बात लिए उन्होंने भाव अधिकार में यही हो प्रकृति बंध अधिकार में हाँ चलो मैंने यहाँ लिखा है ना एवं यहाँ वो अनाहार होती नेदवम नेदवम का अर्थ ज्ञातव्य होता है ना क्या होता है ले जाना भी चाहिए अगर हम ले जाना चाहिए करेंगे हम फिर भी उसका अर्थ क्या है उस मार्गणा तक ले जाना चाहिए
आगे
नहीं वो बात व्यतीत नहीं होती इसी तरह अनारक मार्गणा तक जानना चाहिए उसका अर्थ है ये पूरी लाइन बराबर नहीं है यहाँ लिखा है इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए क्योंकि ये बात बहुत बार आई है कि जहाँ सभी मार्गना वही बात घटित होती है ना ले जाना चाहिए और ले जाना चाहिए पद्धति भी हमने पहले देखी थी ले जाना चाहिए उनकी वाक्य रचना होती है ले जाना चाहिए आगे पढ़ेंगे ये पूरा एक वाक्य काटकर हमने उसको लिखा इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक ले जाना चाहिए क्या ले जाना चाहिए औदयिक भाव से ही बंद होकर बस ये बात मिथ्या दृष्टि जी मिथ्या तो भाव से चारों गतियों का बंधक होता है मिथ्या तो हम लोग संसार नपुसक वेद असंप्राप्त सुपाटिका सहनन एक इंद्रिय स्थावर आतप आताप लिखा है सूक्ष्म अपर्याप्ति लिखा है अपर्याप्त चाहिए साधारण बाद में लिखा के दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय साधारण नरगति नरगत्यानुपूर्वी नरकायु ये 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व भाव से बनती है ये बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां हैं यानी वहां उसका बंध विच्छित्ति हो जाती है विश्व के सभी प्राणी कर्म फल में अधिक रुचि रखते हैं कोई जीव दुख नहीं चाहता है सभी सुखी रहना चाहते हैं किंतु जीव पुद्गल के आलंबन से संस्कार के कारण अभी संस्कार किसको कहा कर्मोदय वो उसमें बने रहे और उसका उदय हुआ तब उसका निमित्त बनेगा राग द्वेष मोह मिथ्या तो भावों को न पहचान कर उनसे निवृत्त हुए बिना जिन भावों से स्पंदन किया करता है उनसे कार्मण पुद्गलों को ग्रहण कर निरंतर कर्म बंध करता है यानी उन भाव से भाव सहित स्पंदन करता है योग लेना है परंतु वो राग द्वेष से स्पंदन नहीं हो रहा है राग द्वेष के सहित वाला स्पंदन हो रहा है योग तो हो रहा है उसमें तो उदय है नाम कर्म का उदय शरीर नाम कर्म का परंतु ये राग द्वेष सहित वाला योग है तो वहां कर्म बंद करता है उनसे कर्मण पुद्गलों का ग्रहण कर निरंतर कर्मबंध करता रहता है वस्तुतः मोह्य कर्म के उदय से बुद्धि का विपरीत परिणमन होता है यह अज्ञान तथा अध्यवसान भाव ही बंध का मूल कारण है हाँ, क्योंकि अपने असली भाव को और मौजूदा भाव को वह नहीं पहचानता। असली भाव तो ज्ञान रूप है और मौजूदा ने भी भाव रूप परिणमन भी है, वो दो भिन्न भिन्न ये इसको पहचान नहीं है, ऐसे अर्थ ले सकते हैं इसका। मौजूदा भाव है ना राग द्वेष के परिणाम और अपना असली भाव है ना ज्ञान परिणाम। हाँ, वर्तमान के परिणाम जो मोरा में उसमें भेद ज्ञान नहीं है उसको, बात ये अपना भाव और मौजूदा भाव को नहीं पहचानते। महाबंध की द्वितीय तृतीय पुस्तक में स्थिति बंध का प्रतिपादन है, ये तो पहली पुस्तक की बात उन्होंने बताया। कर्म का मुख्य कार्य जीव को संसार में रोक कर रखना है। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से स्थिति और अनुभाग बंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व शरीर छूटने पर नवीन जन्म की प्राप्ति के पूर्व ही कहां और किस जन्म को धारण करना है और वहां कब तक रहना है यह सब पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। स्थिति बंध का सामान्य अर्थ है शरीर में जीव का अमुक समय तक रहना। ये बात नहीं है, ये कर्मों की बात है। कर्मों का जीव के साथ अमुक समय तक रहना, ये स्थिति बंध है ना। वो स्थिति वो आयु स्थिति के पर आयु के साथ चलेगी बात, अन्यत्र नहीं। स्थिति बंध का सामान्य अर्थ है कर्म का जीव के साथ अमुक समय तक रहना। स्थिति बंध के मुख्य चार भेद कहे गए हैं। चार भेद यानी वो इसमें हो जाएगा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य जघन्य, उसमें भी सादि अनादि ध्रुव अध्रुव वो भी हो जाएंगे। स्थिति बंध के हाँ, स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध का सामान्य कारण कषाय है। आगम में कषाय मिला के मिला मिला जहां से अभी करेक्शन किया ना उसके नीचे की लाइन कारण कषाय, क्योंकि हमने कषाय से स्थिति और अनुभाग बनता है। आगम में कषायों के विविध भेदों तथा स्थानों का उल्लेख मिलता है, उनमें से कषाय अध्यवसान स्थान दो प्रकार के होते हैं, संक्लेश स्थान और विशुद्धि स्थान। असाता के बंध के योग्य परिणामों को संक्लेश और साता के बंध योग्य परिणामों को विशुद्ध कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के परिणाम कषाय रूप होने पर भी विभिन्न जाति के। फिर जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से दोनों ही तरह के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य नियम यह है तिर्यंच मनुष्य देवायु के सिवाय सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है, किंतु विशुद्ध परिणामों से जघन्य स्थिति बंध होता है। यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख योग्य है कि महाबंध में इन परिणामों के संदर्भ में संसारी जीवों को दो रूपों में विभक्त कर दिया है, साता बंधक और असाता बंधक। दोनों तरह के जीव तीन तीन प्रकार के होते हैं, चतुस्थान तृतीय स्थान और द्विस्थान बंधक। तृतीय स्थान है त्रिस्थान बंधक, चतुस्थान बंधक, त्रिस्थान बंधक और द्विस्थान बंधक। न वो नहीं, अभी हमने साता बंधक और असाता बंधक के तीन तीन में वो पहले आए थे, चतुस्थान बंधकों के एवं मध्य के ऊपर के परिणाम ऐसी ऐसी बातें आई थी। देखो यानी जो ज्ञानावरण भी बनता है तो साता के साथ भी बन सकता है, असाता के साथ भी बन सकता है। तो साता के साथ चतुस्थानिक बंध जब कहेंगे तो विशुद्ध परिणाम मोस्ट, क्योंकि साता का चतुस्थान बंधक होगा। और असाता में अगर उसको कहेंगे तो उसके अति अति संक्लेश परिणाम वो वाले बंध, क्योंकि वो साता असाता पर वो चतुस्थान त्रिस्थान द्विस्थान लगा। देखो साता के चारों स्थानों का बंद करने वाले जीव सर्वविशुद्ध होते हैं। त्रिस्थानक बंद करने, यहाँ त्रिस्थानक लिखा है ना, तो ऊपर उन्होंने तृतीय स्थान है, त्रिस्थान चले। त्रिस्थानक बंद करने वाले संक्लिष्ट तर, यानी वहां सर्व विशुद्ध से थोड़े संक्लिष वाले हैं, और द्विस्थान बंधक जीव उनसे अधिक संक्लिष्टतर होते हैं। इसी प्रकार साता के
यहाँ जो लिखा है द्विस्थान बंधक जीव उनसे भी अधिक संक्लिष्टतर होते हैं, अधिक संक्लिष्टतर,
अधिक संक्लिष्टतर यानी संक्लिष्टतम होते लिखते केवल, तो ये चल जाता है। ये साता का बंध तो करना कर रहे हैं, तो कंपेरेटिवली मैक्सिमम संकोच वाले तो द्विस्थान बंद कर रहे, साता का द्विस्थान बंद कर रहे। यहाँ लिखा ना इसी प्रकार साता के उदय में जानना चाहिए, ऐसा नहीं है,
इसी प्रकार असाता,
असाता के बंद में जानना चाहिए। असाता के बंधकों में भी जानना चाहिए, साता के उदय में भी नहीं, असाता के बंधकों में। इससे यह स्पष्ट है कि महाबंध में संक्लेश और विशुद्धि परिणामों में भेद होने पर भी वे विशेष अर्थ के वाचक है जो तारतम्य रूप अंश के सूचक है। हाँ, संक्लेशतम होते हैं, संक्लिष्टतम कहेंगे उसको, अधिक संक्लिष्टतर नहीं, संक्लिष्टतम हो जाते। उनसे भी संक्लिष्टतम होते हैं सर।
दोनों में चेंज करना
किस महीने ने, नहीं
पहले में तो आएगा, सेकंड में
तम आएगा। अभी लास्ट पैराग्राफ आठ पेज पर, मोहनी यानी दर्शन मोह मिथ्यात्व यानी चारित्र, दर्शन मोह मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट सिद्धिबंध सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि बंधने योग्य मिथ्यात्व ही तो है दर्शन मोहने में। इसलिए इसे ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है। मोहनी कर्म को जो सर्वघाती द्रव्य मिलता है उनमें से एक भाग चार संवेलन कषायों में और दूसरा एक भाग बारह कषायों में तथा मिथ्यात्व में विभक्त हो जाता है। मिथ्यात्व का भाग कषायों और नौ कषायों को मिलता है। मिच्छत्तस्य भावो कषाय नौ कषाय सु गच्छति, या कुछ गड़बड़ी है इनके लिखने में। जो सर्वघाती है ना उनमें से तो सत्रह भाग हो जाते हैं, मिथ्यात्व तो और सोलह कषाय को जाता है। और मिथ्यात्व तो की बंध विचित्र होने के बाद वो उसका कषायनो कषायन को जाएगा। आगे पढ़ेंगे ना, छोड़ देंगे। छठी पुस्तक में 307 पेज पर क्या लिखा है, निकालो तो। कर ही रहे तो जरा करेक्शन कर लेंगे। पेज नंबर 307 मिच्छत स्वभाव कसाय नु कसाय सु गच्छति, संधिकर्ष की बात है, संधिकर्ष की सिद्धि। मिच्छत से भावो कसाय कर्म कसाय गच्छति। एक मिनट ये परस्थान से निकर्ष की बात है, नाना प्रकृति के बंध के सन्निकर्ष की सिद्धि करने के लिए उदाहरण बतलाते हैं, यानी वो विभाजन कैसा होता है उसकी बात है, मूल प्रकृति विशेष, प्रण्ड प्रकृति विशेष, उत्तर प्रकृति विशेष वगैरह वगैरह। पिंड प्रकृति विशेष में हम पर सन्निकर्ष साधन पर जानने के चाहिए, मिथ्या तो कमा कषाय कषायों को न कषायों को मिलता है, अनंतानुबंधी चतुष्क का भाग कषायों को मिलता है, उसका अर्थ क्या किया था हमने, पहले वेदनी जाता है फिर मोहिनी में जाता है वो देखा था ना हमने, और उसमें भी सत्रह में विभाजन होता है मोहिनी का, पहला भाग मिथ्यात्व में जाता है, यानी उसके ऊपर ये बात लिया आता है, ये उसका अवहार कल्याण अवली के वो असंख्यात विभाग से भाग देते हैं, जितना सर्वघाती द्रव्य है उसको अवली के असंख्या भाग से भाग देंगे, एक भाग पूरा निकालेंगे अलग से रखेंगे, सत्रह समान भाग करेंगे, तो जो एक भाग रखा था उसका बहुभाग बहुभाग चला जाएगा, यानी पहले मिथ्या तो को जाएगा, फिर अनंतानुबंधी, फिर संज्वलन, फिर प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान आदि, वो बात यहाँ बताना चाहते, ये भी बराबर नहीं लिखना, यानी इसमें से कुछ क्लियर नहीं हो रहा,
ये विद्यात्व
जो सर्वघाती द्रव्य उसमें से एक भाग चार समय कषायों में, दूसरा भाग बारह कषायों में, मिथ्यात्व में भक्त, ये बात नहीं, सही नहीं है, ये भी निकाल देना आपके, हाँ वहाँ से आगे की बात बराबर नहीं है, उसका जो उसने सही अर्थ नहीं लिया, अभी उसमें से जो लिखा है ना, मोहिनी कर्म को जो सर्वघाती द्रव्य मिलता है उसमें से वो तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण प्रतिभाग से सत्रह से इक्वल भाग करेंगे, फिर बहुभाग बहुभाग इनको दे देंगे, यानी ये भी बात गलत है, यहाँ जो लिखा ना मिच्छत सभागो कसाय नो कसाय सुगच्छति, उसका अर्थ सही नहीं किया हूँ, नहीं 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 उसमें से दो लाइन जो हिंदी में लिखी है उसका अर्थ बराबर नहीं, अब हम नौ पेज पर, हमें मालूम है ना कैसा वो क्या विभाजन होता है, मोहिनी का विभाजन देखिए कर्म का, देखिए कर्मकांड, वहां पर भी हमने कर्मकांड निकालकर समझाया था, 307 पेज पर आपकी पुस्तक है उसमें लिखा है, पेज नंबर 9, दो पेज रह गए ये भूला करते आज। महाबंध की चौथी और पांचवी पुस्तक में अनुभाग बंध का विवेचन है, अनुभाग शब्द का अर्थ है फल देने की शक्ति, जिस कर्म की जितनी फल देने की शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम अनुभाग बंध है, यहाँ पर भी ये जो फल निषेकों के रूप में मिलता है ये बात गलत है, स्पर्धक होते हैं और उसका पहले भी उन्होंने लिखा था स्कंद निषेकों में बनते हैं और उसमें उगदे आते हैं, वो भी उनकी बात गलत रही थी। बंध के बारे में उन्होंने लिखा था, वो तो उसके निषेक रचना तो हम उसको समझाने के लिए दिखाते हैं, वो निषेक रूप से बनते तो नहीं है। चलो, प्रकृति बंध की भांति पांचवी पुस्तक में भी स्पष्ट उल्लेख है कि ओघ से सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का कौन भाव है, तो औदयिक भाव है। ओघे सवोपगदीनम उत्कसनु कस अनुभाग बंधयति को भावो उदयो भाव, पृष्ठ 221। मिथ्या तो सबसे तीव्र अनुभाग वाला है, अनंतानुबंधी लोभ का अनुभाग अनंत गुणाहीन है, यही है, यही नहीं, अनंतानुबंधी लोभ के अनुभाग से मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, उससे अनंत गुणाहीन मटल्यानंतर यह सब अनुभाग अधिक है। यह भी नियम है कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव 16 कषाय नपुसक वे धरति शोक वे और जूपसा का नियम से बंध करता है, क्योंकि तीव्र संकलेश वाला है ना, तब तभी यही प्रकृतियां बंधेगी। क्या लिखा है,
भाव लिखा है, बांधने वाला जो है ना, सभी
ये 221 जो पांचवी पुस्तक से बता रहे हैं, और वो जो लिखा था वो पहली पुस्तक में लिखा है, क्योंकि वहां तक पहली पुस्तक की चर्चा चल रही थी, यहाँ चौथी पांचवी पुस्तक का विवेचन। यह भी कहा गया है, नहीं नहीं ये हो गया ना, अभी सेकंड पैराग्राफ, जो अनुभाग बंधाद्यवसान स्थान है वे ही अनुभाग बंध स्थान है, अन्य जो परिणाम स्थान है वे ही कषाय उदय स्थान कहे जाते हैं। यह अवश्य है कि जघन्य स्थिति में अनुभाग बंध दिवसान स्थान मिथ्यात्व और 16 कषायों के सबसे कम तथा उत्कृष्ट स्थिति में विशेष अधिक होते हैं। इस विशेषता का उल्लेख भी यहाँ किया गया है, अप्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख होकर बांधता है और प्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों को सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के सन्मुख होकर बांधता है। ये क्या है, सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के सन्मुख क्यों होगा, गलत है। देखो, अप्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों को नहीं, सम्यक्त के सन्मुख, और वो भी बांधता है नहीं, प्रकृतियों को कैसा बांधता है, तो जघन्य स्थिति और अनुभव सहित बांधता है। मिथ्यात्व का जघन्य बंध कब होगा, तो स्थिति भी जघन्य बांधेगा, अनुभव भी जघन्य बांधेगा। अभी ये जो प्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों को चौथे गुणस्थान वाला जो प्रशस्त प्रकृतियां बांध रहा है उसका जघन्य अनुभाग कब बंधेगा, वही वही उल्टा उल्टा, आप भी उल्टा रहो, अप्रशस्त हो गए तो पांचवे के सन्मुख, सातवें के सन्मुख, पांचवा भी नहीं, सातवें के सन्मुख होगा। यहाँ ये लिखना है उनको, अप्रशस्त ध्रुवबंध प्रकृतियों को नहीं, प्रकृतियों के जघन्य स्थिति अनुभाग को और प्रशस्त ग्रह बनने वाली प्रकृतियों के जघन्य स्थिति कौमा अनुभाग को और अनुभाग को। अब चौथी और पांचवी पुस्तक में अनुभाग की बात है, अनुभाग को ही लेना है क्योंकि स्थिति जो है ना समय दृष्टि की स्थिति उत्कृष्ट बनेगी और अनुभाग जगन्य बनेगा प्रशस्त प्रकृतियों का। यानी यहाँ मात्र अनुभव की चर्चा है, चौथे पास की पुस्तक में अनुभव की चर्चा है। हाँ स्थिति नहीं लिखना, जगन्य अनुभव को देखो कि अप्रशस्त दुर्बंधी वाली प्रकृतियों के जगन्य अनुभव को मिथ्या दृष्टि सम्यक्तों के सन्मुख होकर बांधता है और सम्यक्त के वो भी सातवें गुणस्थान के, एक्चुअली संयम के सन्मुख लिखो तो अच्छा है, संयम के सन्मुख ना ना स्व सन्मुख होने से चौथे में जाएगा, पांचवे में जाएगा, सातवें में जाएगा। तो जगन्य बंध तो सातवें के सन्मुख वाला करेगा, संयम के सन्मुख होकर बांधता है। अप्रशस्त इस विशेषता का उल्लेख भी यहाँ किया गया है कि प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग को मिथ्या दृष्टि संयम के सन्मुख होकर बांधता है और प्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग को समय दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख होकर बांधता है। बहुत गलतियां हैं इसमें,
ये पूरा वाक्य ही गलत है।
सेकंड में भी जगन्य अनुभाग को मिथ्या दृष्टि
369 पांचवी पुस्तक में जाने दो। अतः इनके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है।
ये आपने जो लिखा है प्रशस्त ध्रुवबंध प्रकृतियों को,
प्रशस्त की बात कर रहे हैं ना, समय दृष्टि जीव मिथ्यात्व के सन्मुख होकर बांधता है।
प्रशस्त द्रोगति वाली प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग द्वितीय पीछे प्रशस्त द्रोगति वाली प्रकृति का जगन्य अनुभाग,
मेरा ध्यान नहीं है आपके पास है, मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, मैं यहाँ देख रही हूँ। ये कौन सी पुस्तक है इसमें है, चौथी पुस्तक वही है ना क्या, एक मिनट, वही पुस्तक वही पृष्ठ दो, वही पृष्ठ किसमें, किसी को भी कहीं पर जोड़ दिया, यहाँ उत्कृष्ट अनुभव की बात है ठहरो, और वो समय मिथ्या तो मार्गना में घटित कर रहे,
तो
इसलिए मिथ्या तो के जन्म को सन्मुक्त हो और मिथ्या दृष्टि कहाँ हुआ था? देखो यहाँ लिखा है और वो भी विशेषार्थ में लिखा है, चौथे पुस्तक में 369 पेज वहाँ लिखा है, अप्रशस्त ध्रुवबंदी वाली प्रकृतियों का मिथ्या तो के अभिमुख हुए जीव के और प्रशस्त ध्रुवबंदी वाली प्रकृतियों का सम्यक तो के अभिमुख हुए जीव के उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। इस अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के अंतरकाल का निषेध किया। ये समय मिथ्या दृष्टि मार्गणा में चल रही बात। अब यहाँ जो लिखा है ना मिथ्या दृष्टि जीव लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो के सम्मुख होकर मानता है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि और प्रकृतियों को नहीं प्रकृतियों के अनुभाग को उत्कृष्ट अनुभाग उत्पले पुस्तक चौथी है। अब ये निकाल देना जो हमने संयम के लिए किया है और ये उत्कृष्ट अनुभाग बंद को जगन्नाथ ने उत्कृष्ट जगन्य के बदले उत्कृष्ट लिखो और ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि उसको भी बदलना पड़ेगा, दोनों जगह सम्यक मिथ्या दृष्टि चाहिए।
एक
देखो अप्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग को सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या तो के सन्मुख होकर वो बराबर है मानता है और प्रशस्त ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग को यहाँ पर भी सम्यक लिखा ना उसके आगे मिथ्या करना सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव। अभी ऊपर लिखो उत्कृष्ट अनुभाग को सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या तो के सम्मुख होकर बांधता है वो बराबर है। अभी उसको चार लाइन को ब्रैकेट करके ऊपर ले जाओ लिखो वहाँ पर यहाँ समय मिथ्या दृष्टि मार्गणा में हाँ ये कहते ना कोई भी रेफरेंस कहीं पर भी दे देते हैं ना यही बात यहाँ पर भी होती है लिखते झोला में लिखा जाओगे अरे बापरे ओवर टाइम हो गया ये दो लाइन लिखो यहाँ समय मिथ्या दृष्टि मार्गणा में उत्कृष्ट अनुभाग का कथन है कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दिया है। हाँ ठीक है अभी हम ये करेक्शन किया बाकी कल पढ़ेंगे
बस इतने
हाँ क्योंकि उन्होंने वो अन्यत्र जो इतना विशेषता उल्लेख किया है परंतु वो विशेषता जो है वो समय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में है जब वो अंतिम समय में उत्कृष्ट होगा तो उसका फिर मिथ्या तो समय मिथ्या तो गुणस्थान नहीं रहेगा ना उत्कृष्ट का अंतर होगा ना अनुत्कृष्ट का अंतर होगा इसलिए उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं और अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं यह ओघ में या अन्यत्र बात नहीं है। हाँ
अभी आपने ये जो लिखवाया प्रशस्त ध्रुव वर्ग वाली प्रकृतियों को सम्यक मिथ्या दृष्टि
के उत्कृष्ट अनुभव
प्रकृतियों के
तब वो प्रशस्त का उत्कृष्ट बांधेगा और जो सम्यक दृष्टि होने वाला है चौथे में जाएगा तो प्रशस्त का उत्कृष्ट अनुभव बांधेगा तो अंतिम समय में उत्कृष्ट हुआ तो न उत्कृष्ट का अंतर होगा न अनुत्कृष्ट का अंतर ये कहना चाहिए।
अभी आपने जो बताया प्रशस्त ध्रुव प्रकृति
के उत्कृष्ट अनुभव को सम्यक के सम्मुख होकर बांधना है वो रखना है वो पहले ख्याल में नहीं आया कि हमको लगा कि रेगुलर चल रहा है हमने तो ओग में लगा हमको और ये तो मार्गणा की बात चल रही थी अच्छा है पुस्तक निकाला तो अपने ज्ञान में नहीं वृद्धि में मगर उसमें कुछ करेक्शन हो गया चलो अच्छा होगा। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतो।